गतियों से आने जाने की बात, नाम का विषय चल रहा है जो अपने रोम रोम को सिहरा देने वाला स्वाध्याय है। यानी ये तो सब लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, कौन कौन सी गतियों से, किस गति में जाता है, किस प्रकार से अपने परिवर्तनों को पूरा करता है, और पंच परिवर्तनशील संसार के अंदर हमें भी पंच परिवर्तन करते करते बहुत समय निकल गया है। आज मनुष्य गति मिली है और मनुष्य गति के चौराहे पर खड़े होकर कम से कम हम अपने आगे के मार्ग को तय कर सकें, और आज हम किस स्थिति में हैं, पहले किन स्थितियों से गुजर चुके हैं, ये सब बातें आपको इसके माध्यम से बताई जा रही है। पुस्तक छोटी किंतु ज्ञान तो असली यही है कि हम जाने ऐसे ज्ञान को ही आत्मसात करके आचार्य शांति सागर महाराज ने सर्प के उपसर्ग को झेला, चींटियां शरीर में काटती रही 24 24 घंटे तक, काट करके शरीर को लहूलुहान बना दिया, लेकिन आचार्य श्री अपने चर्या से, अपनी सामायिक से डिगे नहीं और अपने उपसर्ग को स्वयं दूर नहीं किया। तो क्या था, वो कोई पत्थर के तो नहीं थे, इसी औदारिक शरीर से ही तपस्या कर रहे थे, और ध्यान में कर्म की व्यवस्था में इन 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने की यात्रा का स्मरण करते करते अपने शरीर को आत्मा से भिन्न कर दिया था, यानी अपनी आत्मा के रस में निमग्न थे। आचार्य वीर सागर महाराज जो उनके प्रथम पट्टाचार्य थे, अपने गुरु के गुणों के अंश उन्हें उनके अंदर आए, गणि ज्ञानमती माताई के दीक्षा गुरु थे वीर सागर महाराज, जिनके पीठ में अधीर का फोड़ा हुआ, असह नी वेदना के होते हुए भी पहले तो कई दिनों तक उस वेदना को सहन किया, पुनः डॉक्टर से ऑपरेशन करा करके बिना बेहोशी किए ऑपरेशन किया गया, और 1 1.5 घंटे तक वे कर्म व्यवस्था पर चिंतन करते हुए, उन्होंने भी जैसे कोई चीज शरीर से उठा करके अलग रख दी जाती है, इस तरह से उन्होंने आत्मा से शरीर को बिल्कुल अलग कर दिया था, और कोई हूं तू नहीं, कोई शरीर का हलन चलन नहीं। डॉक्टर भी सोचता है कि क्या ये पत्थर के हैं, तो ऐसे ऐसे उपसर्गों को सहन करने की क्षमता कब आती है, जब इन विषयों पर चिंतन करते हैं। अगर हमने नरक गति के विषय को आपको 4 दिन के अंदर पढ़ाया है, तो इसको कैसे चिंतन करना है आप एक दूसरे को बता करके करिए, कि किस प्रकार से 7 नरक होते हैं और 7 नरकों में कैसे कैसे वेदना को सहन करते हैं, और एक एक नरक से निकल करके भी जीव कौन कौन सी गतियों में जा करके और किस प्रकार से दुख और क्षणिक सुख का अनुभव करता है। आज उसी क्रम परंपरा में हम अब चल रहे हैं, तिर्यंच गति से आने जाने के द्वार। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु सदा, मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो ऐसा माता सरस्वती वरदान दें, और विद्या का आरंभ विद्या की प्राप्ति वृद्धि में कारण बने, इस भावना से अब चलते हैं। तो तिर्यंच गति से आने जाने की द्वार, आप सब स्वाध्यायी भाई बहनों को इस पुस्तक का पीडीएफ भेजा जा चुका है, और उसके अंदर आप खूब अच्छे से एक एक पंक्तियों पर मन लगाएं, ध्यान दें, पढ़ें। विषय का शुभारंभ होता है, पंचेंद्रिय पशु यदि मरण करते हैं तो वे 24वें दंडक में चारों गतियों में जा सकते हैं। तो पहले आप 24 दंडक को समझिए, 24 दंडक कौन कौन से, नरक गति का 1 दंडक, क्योंकि समझना हमें कि तिर्यंच गति से आने के द्वार भी और तिरंज गति से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वहां भी। तो नरक से तो मर करके कोई भी जीव तिरंज हो ही सकता है, या तिरंज या मनुष्य दो ही होंगे। तो तिरंज गति का प्रकरण चल रहा है। पहला दंडक तिरंज गति का, नरक गति का दंडक, भवनवासी के दंडक 10, जो भवनवासी देवों के भेद हैं। ज्योतिष देव का एक दंडक यहाँ लिया है, व्यंतरों का एक, वैमानिक देवों का एक, स्थावर के 5, पंच स्थावर होते हैं, विकलत्रय के 3, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंच का 1 और मनुष्य का 1। ऐसे मिला करके 1 + 10 + 1 + 1 + 1 + 5 + 3 + 1 + 1 = 24। ये 24 दंडक माने गए हैं। इन 24 दंडकों के नाम पंडित दौलत राम जी कृत 24 दंडक नामक पुस्तक से दिए गए हैं। 24 दंडक नाम का पहले छोटा गुटका सा होता था, और संघ के अंदर साधु लोग बैठ करके उससे चर्चा करते थे, आपको कितनी इंद्रिय हैं, चींटी के कितनी इंद्रियां हैं, कौन सी जाति है, कौन सी गति है, ये सब उन 24 दंडकों में 24 भेदों के आधार पर चर्चा चलती थी। तो बिना पढ़े लिखे लोग भी उसके अंदर बैठते थे। जिसने बड़ा भारी कोई क्लासों की परीक्षा नहीं दी है लेकिन धर्म के क्षेत्र में आए हैं, तो कम से कम इन चीजों का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए बड़ी उम्र की ब्रह्मचारी बहने, ब्रह्मचारी लोग, सब लोग उस क्लास में बैठते थे, हमने स्वयं देखा है। और 24 दंडक में से उत्तर भी देते थे। वे आपसे पूछा गया, आपकी गति कौन सी है, मनुष्य गति है। आपकी जाति क्या है, पंचेंद्रीय जाति है। यहाँ जाति से मतलब अग्रवाल खंडेलवाल जाति नहीं, ये तो 84 जातियां शरीर को आधार बना करके बनी। लेकिन जीव की जाति तो 5 जातियां, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति। तो वृक्ष की क्या जाति है, 1 इंद्रिय जाति है। उसके इंद्रियां कितनी है, 1 इंद्रिय। ऐसे एक एक चीज पूछ करके तो सबको बड़ा आनंद आता था और रुचि होती थी बताने की, पुनः आगे के लिए विषय भी उन्हें दिया जाता था। तो ये 24 दंडक उस पुस्तक से लेकर पूज्य माताजी ने यहाँ 2400 दंडक का परिचय कराने के लिए आपको नाम दिए हैं। पंचेंद्री तिर्यंच इन 2400 दंडकों में जा सकते हैं, और 2400 दंडक से आए हुए जीव पशु हो सकते हैं। इन 2400 स्थान से आए हुए जीव तिर्यंच बन सकते हैं, पशु बन सकते हैं, और 2400 दंडक में कोई भी पंचेंद्री तिर्यंच मर करके जन्म धारण कर सकता है। यहाँ उस प्रकार की बात नहीं है कि नरक गति से निकल करके कोई नरक गति में नहीं जा सकता, स्वर्ग से निकल करके कोई स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, या नरक का जीव स्वर्ग में नहीं जा सकता, या स्वर्ग का जीव नरक में ले, वो इन दो गतियों का ये विशेष नियम है। लेकिन तिर्यंच गति का जीव मर करके तिर्यंच में भी जन्म ले सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, देव भी बन सकता है, और नारकी भी बन सकता है। तो 2400 दंडक के अंदर ये बात बताई कि उसमें जा सकते हैं, और 2400 दंडक से आकर जीव पशु बन सकते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच हो सकते हैं। तो आप कहते हैं विकलत्रय अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों के जाने की तथा आने की 10 ही गति होती हैं। समझ गए कि ये विकलत्रय, विकलत्रय माने 1 इंद्रिय को तो छोड़ दिया, वो तो स्थावर में आ जाते हैं, और जिनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, ऐसे विकलत रहे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव, ये त्रय शब्द लगा है, विकल है इंद्रियां जिनके, माने पूर्ण इंद्रियां नहीं है, ऐसे विकलत रहे जीव, इनकी जाने की आने की 10 ही गति है। तो अभी बता रहे हैं ये विकलत रहे मरकर 5 स्थावर, 10 गति कौन सी है, 5 स्थावर पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। तो ये 5 स्थावर, इनके 1 इंद्रिय होती है, तो इनको 5 स्थावर कहते हैं। और 3 विकलेंद्रिय, विकलत्रय 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव, तो 5 और 3 8 हो गए, और पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य, तो ये 10 हो गए। इन 10 स्थानों में, यानी दस गति में दस प्रकार से 10 स्थानों में जन्म ले सकते हैं। जो विकलत्रय जीव है, पहले विकलत्रय जीव को लिया है कि ये मर करके इन 10 स्थानों में जन्म ले सकते हैं, और इन 10 स्थानों से निकल कर ही विकलत्रय होते हैं। पंच स्थावर से निकल करके भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय हो सकते हैं। अर्थात विकलत्रय जीव तिर्यंच गति और मनुष्य गति में ही तो जन्म ले सकते हैं, और तिर्यंच या मनुष्य ही मरकर विकलत्रय हो सकते हैं। ये विकलत्रय जीव मरकर देव गति या नरक गति में नहीं जा सकते, समझ गए ना? क्योंकि बहुत छोटे जीव है ये, इनके अंदर मन भी नहीं है। जो मन सहित पाप करते हैं वही नरक गति में जाते हैं, जो मन सहित पुण्य करते हैं वही देव गति में जाते हैं। तो इनके मन नहीं है, और इंद्रियां भी हैं तो कम इंद्रियां हैं, परिपूर्ण नहीं है, तो इनके अंदर देव गति और नरक गति जाने की योग्यता नहीं होती है। ये तिर्यंच या मनुष्य मरकर जो विकलत्र होते हैं, ये विकलत्र जीव मर करके देव गति या नरक गति में नहीं जा सकते, और ना देव गति या नरक गति से निकलकर जीव विकलत्र ही हो सकते हैं। इनका अस्तित्व भी कर्म भूमि में ही है। पहले विकलत्र जीवों को लिया है, ध्यान देना। तो इनका अस्तित्व कहाँ है? इनका अस्तित्व कर्म भूमि में। ये जीव ना नरक भूमि में है, ना स्वर्ग भूमि में है, ना भोग भूमि में है, और ना असंख्यात द्वीप समुद्रों में ही जन्मते हैं। ये मात्र कर्म भूमियों में लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप के उत्तर भाग की कर्म भूमि में तथा स्वयंभू रमण समुद्र में ही जन्मते हैं, अन्यत्र ये नहीं पाए जाते हैं। तो अपनी कर्म भूमि के अंदर आज न जाने कितने विकलत्र जीव दिख रहे हैं, मच्छर, मक्खी, ततैया, भौरे, लट, ये सब चींटी, चीटा, ये सब विकलत्र जीव हैं। हम सब कर्म भूमि में हैं। आज विकलत्र जीव की खूब अधिकता है, जरा सा बरसात होती है असंख्य जीव 2 इंद्री 3 इंद्री दिखते हैं अपने को, उड़ने वाले उड़ रहे हैं, लगता है इतना छोटा सा जीव है, और होती है उसकी 4 उंगली। तो इनकी स्थिति जो है, इनका अस्तित्व कर्म भूमि में ही है। नरक में विकलत्रय जीव नहीं है, स्वर्ग में भी विकलत्रय जीव नहीं है, भोग भूमि में भी नहीं है, वहां कोई मच्छर काटने वाला नहीं है, और ना असंख्यात द्वीप समुद्रों में ही जन्मते हैं। केवल कर्म भूमियों में लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र में, स्वयंभू रमण द्वीप में, उसके उत्तर मतलब अंदर की ओर ही कर्म भूमि में और स्वयंभू रमण समुद्र में ही जन्म लेते हैं, अन्यत्र ये नहीं पाए जाते हैं। तो इनके अस्तित्व की ये बात बताइए। अब आगे कहते हैं, नारकियों के बिना बाकी शेष 23 दंडक, जो 24 दंडक ऊपर बताए हैं, उसमें नरक गति का एक दंडक छोड़कर बाकी 23 दंडक के जीव मरकर पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक में जन्म ले सकते हैं। अर्थात भवनत्रिक और वैमानिक में ईशान स्वर्ग तक के देव मरकर इन तीनों स्थावर में जन्म ले सकते हैं। आप पढ़ते हो, तहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करें। स्थावर तक की योनि में देवता भी आ सकते हैं। कौन से देवता? भवनत्रिक। भवनत्रिक का मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव। इनमें जीव जब संक्लिष्ट परिणामों से मरते हैं तो 1 इंद्रिय तक की अवस्था को भी प्राप्त कर लेते हैं, और वैमानिक देवों में ईशान स्वर्ग तक के, यानी सौधर्म ईशान स्वर्ग के, सौधर्म ईशान इंद्र की बात नहीं है, सौधर्म ईशान नाम के जो स्वर्ग हैं उनके जो देवता हैं, वे भी अगर मरते समय बहुत संक्लिष्ट परिणामों से अपने शरीर का परित्याग करते हैं, तो तीनों प्रकार के स्थावर में जन्म ले सकते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में, वनस्पति कायिक में। अब क्या हुआ, वायु कायिक और अग्नि कायिक में जन्म नहीं है, ये थोड़ी अंदर में स्थावर कह दिया, तहते चय थावर तन धरे, तो स्थावर में 2 स्थावर छूट जाएंगे, वायु कायिक और अग्नि कायिक, और पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक में ये जन्म ले सकते हैं। तो इस तरह से इनकी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है, तथा ये तीनों स्थावर जीव मरकर देवगति और नरक गति के सिवाय सर्वत्र 10 दंडकों में, अर्थात पांचों स्थावर, 3 विकलत्रय, पंचेंद्रिय पशु और मनुष्य में जन्म ले सकते हैं। देखो यही उदाहरण रहा होगा कि इसी अयोध्या नगरी में भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र हुए, 923 पुत्र हुए और वे सब जन्म से गूंगे थे। अब सोचो आप, चक्रवर्ती की मन के अंदर कितना कष्ट रहता होगा, लेकिन सब कर्म के आश्रित व्यवस्था है, वो भी यही चिंतन करते थे। भगवान ऋषभ देव की समो सरण में सब के सब 923 पुत्र पहुंचते हैं और वहां भगवान का उपदेश सुनकर उस समो सरण के प्रभाव से ये सब के सब एकदम बोलने लग जाते। अब आप सोचो कि गूंगा बोलने लग जाए तो उसको तो पूरे संसार की निधि मिल गई, और वहां पता चलता है कि भव्य प्राणियों, तुम कहाँ से आए हो, स्थावर योनि से आए हो और पहली बार जीवन के अंदर मनुष्य पर्याय को धारण किया। ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर्याय कितनी मुश्किल से मिलती है, दुर्लभता से मिलती है, और सुनते सुनते 900 के 923 जीवों ने, उन मनुष्य जन्म के धारण करने वाले चक्रवर्ती पुत्रों ने वहीं पर वस्त्र उतार कर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। तो इसमें कहा है ना कि पंचेंद्री पशु और मनुष्य में जन्म ले सकते हैं, तो वे मनुष्य में आकर के जन्मे और उसी जन्म से उन्होंने दीक्षा धारण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये अत्यंत विशेष बात है, सम्यक दर्शन की महिमा, समव शरण की महिमा। यही कारण है कि अयोध्या की धरती पर जहाँ तमाम निर्माण हो रहे हैं, वही 923 उन मोक्षगामी भगवान ऋषभ देव के पौत्र भगवंतों का भी मंदिर बन रहा है। इस प्रतिष्ठा में नहीं तो क्या, आगे उनका मंदिर भी आपके सामने आएगा और उन सभी भगवंतों की प्राण प्रतिष्ठा होकर के अयोध्या के इतिहास को साकार करेंगे। तब आपके मन के अंदर भी आएगा एक बार दर्शन करके कि हमने तो कई बार मनुष्य के जन्म पाए हैं, और आज पा करके हम भी अगर ऐसे अपने जन्म को सार्थक करते हैं तो समझो हमारा मनुष्य जन्म लेना सफल हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये विषय लिया है कि तीनों स्थावर जीव मर करके, कौन से, पृथ्वी काय, जल काय और वनस्पति काय जीव मर करके देवगति और नरक गति के सिवाय 10 दंडों में, अर्थात पांचों स्थावर में, कोई पाप की बहुलता होगी तो पांचों स्थावर में भी जा सकते हैं। तीनों विकलत्रय, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में भी जन्म ले सकते हैं, पंचेंद्री पशु भी बन सकते हैं, और विशेष पुण्य का उदय आ जाए तो पंचेंद्री मतलब और मनुष्य भी, मनुष्य तो पंचेंद्री ही होते हैं, पंचेंद्री पशु भी हो सकते हैं और मनुष्य का जन्म भी ले सकते हैं। यहाँ तक आ जाओ, आपको हमने तिरंच गति से आने जाने के द्वार प्रकरण में स्वाध्याय कराया है, आगे कभी तिरंच गति का प्रकरण और भी चलता रहेगा। जलो दात सांगवई जिनवाणी माता की जय। अब आचार्य देवता चढ़ाकर कुछ माता के पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर